हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है, कौर पूर्णिमा के पहला दिवस, 10 तारीख मार्च। तो श्री गौरांग महाप्रभु का कल आविर्भाव दिवस है। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, वो सारे अवतारों में जितने भी भक्त जन्म लेते हैं, जैसे कि नरसिंह भगवान के अवतार में प्रहलाद जी का चरित्र आता है, और प्रभु रामचंद्र के अवतार में सारे वानर सेना, हनुमान जी, सुग्रीव, जाम्बुवंत, ये जितने भी अवतारों के जितने भी भक्त हैं, जितने भी पार्षद हैं, वो सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृपा करते हैं वो अन्य कोई भी अवतार नहीं करता है। मैंने बहुत पहली बार एक बार हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज के प्रवचन में सुना था कि नरसिंह भगवान, प्रभु रामचंद्र, वामन देव, कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, ये जितने विष्णु के अवतार हैं, ये हर समय अपने भक्त को या अपने सामने जिसका वध होता है उस व्यक्ति को मुक्ति देने में समर्थ नहीं होते। इज नॉट दैट एवरी टाइम 100% एवरीबडी गोज बैक टू गॉड, लेकिन केवल जब श्री कृष्ण भगवान आते हैं और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनके सामने जिसका भी मृत्यु होता है या उनकी कृपा जिस पर होती है, वो सब लोग भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध वराहदेव और नरसिंह भगवान ने किया, लेकिन उनको फिर से आना पड़ा। लेकिन जब कृष्ण के हाथों शिशुपाल दंतवक्र का वध हुआ, तब वो फिर अपने धाम में चले गए। और कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु, इसमें भी अंतर है, अंतर नहीं भी है और है भी। अंतर नहीं क्यों है? क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। वो अवतार नहीं है, कृष्ण भगवान भी अवतार नहीं है और चैतन्य महाप्रभु भी अवतार नहीं है, क्योंकि वो अवतारी हैं, जिनसे सारे अवतार उगम प्राप्त करते हैं वे हैं, इसलिए वो अवतारी कहते हैं। इसलिए इनके दृष्टिपात जिस पर होता है वो व्यक्ति परम धाम को प्राप्त कर लेता है। और श्री कृष्ण भगवान भगवद्गीता के अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मम परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ कर्तव्यों को धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण को प्राप्त करो, फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मोक्ष दिला दूंगा, मां शुचः, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान ने यह नहीं कहा कि आप जब भी मुझे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें मेरे चरणों की भक्ति दूंगा, मेरे धाम में निवास दूंगा, ऐसा नहीं बताया। केवल पापों से मुक्ति दिला दूंगा। और चैतन्य महाप्रभु का ऐसा वरदान है कि एक तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी का वध नहीं किया, श्री कृष्ण भगवान ने अनंत राक्षसों का वध किया है। ऐसे कथा में आता है कि श्रीमद् भागवत में भी पूरा वर्णन नहीं हो सका, लेकिन हर दोपहर को श्री कृष्ण भगवान एक राक्षस को वध करते थे, फिर उनके खेल में जब आता था व्यवधान राक्षस के आने से, तो उसको मारकर नदी में स्नान कर वो भोजन किया करते थे। ये रोज का जितने भी भगवान दिन वृंदावन में रहे, गोकुल वृंदावन में, हर दिन राक्षस का वध किया उन्होंने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी भी राक्षस का वध नहीं किया। वो शस्त्र कोई लेके हाथ में नहीं आते। कृष्ण भगवान ने चक्र भी धारण किया है, शारंग पाणी धनुष धारण किया है, कमुद की गदा को धारण किया है, हर शस्त्र अस्त्र को भगवान ने धारण किया है। और आप अगर कृष्ण चरित्र को पढ़ेंगे भागवत में, तो उन्होंने हर एक शस्त्र का इस्तेमाल करके अलग अलग राक्षसों का वध किया है और उनको मुक्ति दिला दी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाया। उनका शस्त्र केवल एक ही है, हरिनाम। वो केवल एक अस्त्र लेकर आए हैं, वो है हरिनाम। और वो किसी भी दुष्ट व्यक्ति का वध नहीं करते हैं, उसके अंदर जो दुष्टता है, पाप है, उसका वध कर देते हैं। इसलिए पापी तापी याता चिलो हरिनामा उद्धारी दो, तारा साक्षी जगाई मधाई, कि सभी पापी लोगों का उन्होंने उद्धार किया है, लेकिन किसी का भी वध नहीं किया है। यहाँ तक कि जगाई मदाई वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, वही शिशुपाल दंतवक्र थे, वो चौथी बार आते हैं और उन्होंने इतने पाप किए थे कि वो एक दिन में जो पाप करते थे वो हम सब मिलकर पूरे दुनिया में जितने लोग हैं वो सब मिलकर जीवन भर में जितने पाप नहीं कर सकते हैं उतने वो एक दिन में करते थे, और ऐसे कई साल जिए वो। ऐसे भयंकर पापी लोगों का भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया अपने पार्षद बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु के कृपा से। उनके अंदर न केवल उनको डराया धमकाया और पाप से विमुक्त कर दिया, ऐसा नहीं, उसी क्षण जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आगाज किया उसी क्षण उन्होंने उन पर ऐसी कृपा की कि उनके सारे पाप एक क्षण में नष्ट हो गए। केवल एक कंडीशन के ऊपर उन्होंने ये सब पाप नष्ट कर दिए। क्या कंडीशन थी वो, किसी को पता है? एनी कंडीशन? बस ओनली वन कंडीशन कि इसके आगे आप पाप नहीं करेंगे, बस इतना ही वादा करो। एक वादा करने पर कि मैं आगे पाप नहीं करूंगा, इतने भयंकर पाप जो मैंने आपको वर्णन किया कितना भयंकर पाप वो करते थे, सब नष्ट कर दिया। देखो उन्होंने कहा देखो अभी क्या होता है, उनको गले लगाया दोनों को और तत्काल भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्वर्णमय शरीर काला हो गया, दोनों को गले लगाते सारे पाप ग्रहण कर लिए उन्होंने। और यहां तक बात नहीं रुकी, केवल पाप से मुक्त नहीं किया, बोध से मुक्त नहीं किया, उसी समय उसी आलिंगन में उनसे पाप लिया, उनके हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम को स्थापित कर दिया, और थोड़ा बहुत नहीं उनको भाव विभोर कर दिया, वो प्रेम और मद में पागल हो गए। हाँ अभी अभी हमको ब्रजवासियों ने पागल की व्याख्या सुनाई, जानना चाहते हैं पागल की व्याख्या क्या है? जो उनको पाकर गल जाते हैं उन्हें पागल कहते हैं। जो श्री कृष्ण को पाकर पूरी तरह से गल जाते हैं हाँ उनको पागल कहते हैं। ये पागल की दिव्य व्याख्या है, लौकिक व्याख्या नहीं है, अलौकिक व्याख्या है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में शुद्ध प्रेम स्थापन किया और वो वहीं पर कृष्ण प्रेम से पागल हो गए और आनंद से विभोर होकर नाचने लगे कीर्तन में। ये सब एक एक क्षण की बात है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, कुछ तपस्या करनी पड़ी, जंगल में गए, हिमालय की गुफा में गए, तपस्या किया, त्याग किया, सन्यासी बने, ऐसा कुछ नहीं। ऑन द स्पॉट जैसे थे वैसे ही इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे निचले सर से सबसे ऊपर के सर पर ऑन द स्पॉट, ये कृपा है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए इनकी कृपा कितनी गहरी है, कितनी विशाल है, कहाँ तक इसका विस्तार है, ये कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है। इसलिए उनको अवतार या अवतार कहा गया, क्योंकि वो कृष्ण भगवान पहले कंडीशन रखते हैं, पहले चरण में आ जाओ फिर आपको उतारेंगे, लेकिन इनका कोई कंडीशन नहीं है। जैसे इन्होंने बताया एक ही कंडीशन है, आप खाली बोलो कि आप आगे पाप नहीं करेंगे, बस दैट्स ऑल। वो कहते हैं कि केवल भक्तों को नहीं, कि जो भक्त नहीं है, ठाकुर नरोत्तम दास भजन में लिखते हैं जो भक्त नहीं है इनको इनको भी ये प्रेम धन देते हैं। ऐसे महाप्रभु जी का अवतार ठाकुर नरोत्तम दास जी कहते हैं कि पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसमा पतित प्रभु न पाई बिहार। जितना हम पतित बनेंगे उतने हम उनकी कृपा को आकर्षित करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करना आरंभ करेंगे और हम पतित बनेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोग वी आर नथिंग ग्रेट, मतलब ना हम लोग ग्रेट पापी हैं और ना हम ग्रेट संत हैं। हम कुछ भी ग्रेट नहीं हैं, मतलब दोनों स्तर पे हम ग्रेट नहीं हैं कि हम इतने पापी नहीं कि हिरण्यकश्यपु ने इतने पाप किए कि भगवान को उतरना पड़ा नीचे और उनका हाथों वध हुआ उनका, इतने हम महान पापी भी नहीं हैं। प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट यू आर ग्रेट नथिंग, यू आर बेस्ट ऑफ नथिंग, मतलब हम लोग कहीं भी नहीं है, इतने हम तुच्छ हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं कि वो हर व्यक्ति पर कृपा करते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आंख में मैं कभी एक बूंद आंसू देखता हूं कृष्ण नाम को पुकारते हुए तो मैं उसका दास बन जाता हूं, उसी समय मैं अपने आप को उसको बेच देता हूं। और चैतन्य महाप्रभु भी इसी तरह से सब चीज पर कृपा करते हैं। इसलिए हमारा जीवन जो है सब लोगों का बड़ा भाग्यवान जीवन है। क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार कृष्ण आते हैं और केवल एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जिस 1000वें कल्प में, एक कल्प मतलब क्या होता है, 4 युगों का एक कल्प होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलकर 43,20,000 साल का एक युग होता है कलयुग, और 43,20,000 साल से 4 युग बनते हैं, 4,032,00,000 के कलयुग बनता है, उसके 10 गुना जो समय होता है उससे एक कल्प बनता है 4 युगों का। ऐसे 1000 जब पूर्ण होते हैं तो 1000वें द्वापर में कृष्ण भगवान आते हैं और उसी 1000वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु उतार लेते हैं, और वो कलयुग ये है जिसमें हम सब लोगों ने जन्म लिया है। और चैतन्य महाप्रभु ने वरदान दिया है कि मेरे जन्म से 10,000 साल तक उन्होंने पृथ्वी पर 48 वर्ष लीला किया, बचपन का लीला, युवावस्था का लीला और अंत लीला मिलकर 48 साल वह पृथ्वी पर रहे। नवद्वीप धाम में, जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में ऐसे जाकर आए। लेकिन उनके जन्म के 10,000 साल तक जो भी व्यक्ति हरि नाम को स्वीकार करेगा वो व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करेगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया है। तो जो भी व्यक्ति जाने अनजाने में उनके द्वारा दिया गया भगवान का नाम जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार भी इसका उच्चारण करेगा उसका भगवत धाम पहुंचना निश्चित हो जाता है। कब जाएगा वो हमारे हाथ में है, कितनी जल्दी जाएगा वो भी हमारे हाथ में है, कैसे हम तैयारी करेंगे वो भी हमारे हाथ में है। लेकिन एक बार आपने अगर जाने अनजाने भी इस हरि नाम को लिया, स्वीकार किया आदर सहित प्रेम पूर्वक, तो उन्होंने कहा है कि उसे न केवल भगवत धाम बट श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कृपा कोई नहीं कर सकता है, बिना कंडीशन के, बिना किसी नियम के कोई नहीं कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग समझते हैं तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं बेकार में, सब लोगों को बहकाते हैं ऐसे बातें करके, अपनी ओर, अपने संप्रदाय में, अपने मंदिर में, अपने हरे कृष्ण मंदिर में लोगों को लाने के लिए सब ऐसे झूठ मूठ का बात बोल लेते हैं। इसलिए सब लोग को हम ये बातें बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई बहुत उदार होता है तो लोग उस पर विश्वास रखते नहीं, अरे ये नहीं हो सकता है। तो पेपर में एडवर्टाइज आ गया कि आपको एक आदमी आएगा, अगर आप दुकान में 10 बजे आएंगे तो आपको 10 कार भेंट मिलेगी, ऐसा एडवर्टाइज पेपर आएगा तो लोग हंसेंगे, सब भूल भुलैया है, सब ऐसा बोलेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा नहीं है। वो जो सर्वोच्च प्राप्ति है जीवन में उसको लोगों को देते हैं बिना किसी कंडीशन के। और सारे जो देवताएं हैं जो लाखों साल जीते हैं अपने अपने लोकों में, लाखों साल जीते हैं, कई के देवता जो ऊपर के और ऊपर के और ऊपर के स्वर्ग लोकों में रहते हैं वो करोड़ों साल जीते हैं, और ब्रह्मा लोक में जो है वो अरबों साल जीते हैं लोग, और ब्रह्मा स्वयं 311 बिलियन साल जीते हैं, 311 ट्रिलियन ईयर्स। जैसे आप जिसके जिसके पास जाएंगे उतने उतने आयु बढ़ती जाती है। वो सारे लोग जो है 33 करोड़ संख्या है उनकी, 33 प्रधान देवता हैं, उनके अंडर 1-1 करोड़ देवता सेवा करते हैं। वो सारे देवता जो है लाइन लगा के कलयुग में वैष्णवों के माताओं के गर्भ में जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। अभी वो तो हमसे अधिक बुद्धिमान है ना, उनको हमसे अधिक ज्ञान है, नॉलेज है, अधिकार प्राप्त है भगवान की ओर से, कई इंपॉर्टेंट कामों को वो दुनिया में संभालते हैं, पानी, वाटर सप्लाई, सन मून, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, नदी, जलाशय, समुद्र, सबका कंट्रोल करते हैं वो, इतने पावरफुल है, हमारे जैसे दुनिया के पावरफुल लोग नहीं है वो, अति अति पावरफुल भगवान की तरफ से वो लोग, क्योंकि वो शास्त्र जानते हैं, वहाँ पर भी भागवत होती है, वहाँ पर भी संत लोग जाते हैं नारद मुनि जैसे, और वहाँ जाके भी कथा करते हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं, भोग विलास से मुक्त करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, संग देते हैं अपना, और वो जानते हैं इस बात को। तो वो क्या करते हैं, कलयुग में, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे उस कलयुग में जन्म लेने के लिए लाइन से खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों साल स्वर्ग लोक में लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको भगवान की प्राप्ति होगी। दोबारा क्षणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इतना अनंत भोग लाने पर, भोग लेने पर भी, अनुभव करने के बाद भी पृथ्वी पर या नरक लोक में जाना पड़ेगा, और वहां पर दोबारा पुनश्चारी ओम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में अगर आप जन्म लेते हैं 70, 80, 90, 100 मैक्सिमम, हाँ करोड़ों साल की संख्या के सामने 100 कुछ भी नहीं होता है, एक क्षण के समान होता है। उतने समय में अगर न केवल पापों से मुक्ति लेकिन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो सब जीवों के लिए वांछित है वो अगर प्राप्त होता है तो किसको नहीं चाहिए। वो तो वो लोग वहां बैठकर आपको देख रहे हैं कि आप कितने भाग्यवान हो और हमको देखिए हंसते भी हैं, इतने भाग्यवान होने पर भी इनको पता नहीं है क्या इनका भाग्य है, डर डर के ठोकरे खा रहे हैं इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए। हाँ चर्चगेट से विरार विरार चर्चगेट जाते हैं, रोज मेहनत करते हैं, हाँ झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। लेकिन क्या हमारा सबका भाग्य है ये हम जानते नहीं है, ये देखकर देवता लोग भी हमको हंसते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन का गौरव करते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनको प्राप्त नहीं है, वो मौका जो हम सब लोगों को प्राप्त है वो उनको प्राप्त नहीं है। ये ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और ऐसे महाप्रभु चैतन्य उन्होंने कल के दिन पूर्णिमा के दिन फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा जिस दिन पूर्ण चंद्र था लेकिन चंद्र ग्रहण था उस समय सभी लोग नदी में स्नान कर रहे थे और हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे और जो यवन लोग थे वो यवन लोग जो थे वो उनको देखकर चिढ़ाने के भाव से भी हरि हरि बोल रहे थे, यानी कि नास्तिक आस्तिक पापी सब लोग मिलकर उस समय ये न कहने प्रकार हरि का नाम ले रहे थे और नदी में स्नान कर रहे थे। उस पवित्र समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, क्या साबित किया कि उनका अवतार किसके लिए है, पूरे विश्व को आनंद के सागर में डुबोने के लिए। गौलोक धाम का जो सर्वश्रेष्ठ धन है प्रेम धन, यहां का नहीं जो उनका घर है गौलोक धाम, जहां पर वो अपने निज निकट पार्षदों के साथ में निवास करते हैं और नित्य आनंद का अनुभव करते रहते हैं, ऐसे धाम का जो सार है प्रेम धन वही वो कलयुग में हरि नाम के रूप में प्रकट करते हैं। जो आनंद उन्होंने ब्रह्मा जी के एक रात तक रासलीला में गोपियों को दिया, वो दिव्य आनंद जिसके लिए हर जीव तड़पता रहता है, वो आनंद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन में डालकर हम सबको भेंट दिया है, चाहे हम गोपियों की तरह योग्य हो या ना हो, ये महाप्रभु चैतन्य की कृपा है। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। अभी कल अगले पिछले मंगलवार को आपने हमने कुछ कहानियाँ सुनाई भगवान के जन्म के बारे में, किसी को याद है क्या बताया था पिछली बार, कौन सी कहानी बताई थी? चोर की कहानी बताई थी और ब्राह्मण की कहानी बताई थी। तो उस ब्राह्मण की कहानी में एक सप्लीमेंट है वो मैं आज आपको बताऊंगा। वो सप्लीमेंट ये है कि जब ब्राह्मण के सामने निमाए प्रकट हो गए और उन्होंने उनका भात खाया, तो रात तीसरी बार जब उन्होंने बनाया चावल फिर से उन्होंने हाय 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 चिल्लाए, लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सुना। क्या कारण था उसका? क्योंकि तो भगवान के योग निद्रा, योग माया के प्रभाव से सब लोग योग निद्रा में बिल्कुल सो रहे थे, कोई उठ नहीं पाया। जगन्नाथ मिश्रा, सची माता, सखियां सब लोग सो गए और उस समय ब्राह्मण की आंखों के सामने नुमाई ने अपना बाल गोपाल का स्वरूप प्रकट किया। पहले बाल गोपाल, फिर अचानक अष्टभुजा प्रकट हो गए। क्या कहते हैं उनके आठ हाथ में? यस, तो लिख के रखा कि नहीं आपने कुछ? शंख चक्र पद्म गदा और दो हाथ में बांसुरी थी, और बाकी दो हाथ में क्या था? एक हाथ में माखन था, दूसरे हाथ से खा रहे थे। ऐसे अष्टभुजा का दर्शन दिया। उसके बाद में उनके पीछे एक कदम का वृक्ष प्रकट हो गया, उनके पीछे गाय प्रकट हो गई और एक एक को देखते देखते ब्राह्मण जो है बेहोश होकर गिरने लगा, फिर उठने लगा, फिर देखकर फिर गिरने लगा और फिर उनके पूरे पीछे जो है जमुना नदी, गिरिराज, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना सब पूरा ब्रजभूमि प्रकट हो गया, सारी जगहें उनके आंखों के सामने प्रकट हो गई और वो बेहोश होकर बार बार गिरने लगे। तब तो अपने श्री कमर कर कमलों से उन्होंने ब्राह्मण को स्पर्श किया और फिर ब्राह्मण फिर भाव विभोर अवस्था से फिर जागृत हो गए। उन्होंने बताया कि तुम मेरे जन्म जन्मांतर के भक्त हो, हर जन्म में जब मैंने अवतार लिया है तुमने जन्म लिया है और तुम्हारे हाथ से मैंने भात खाया है, जब मैं नंद बाबा के घर में जन्म लिया था श्याम सुंदर के रूप में तभी भी आप आए थे, ऐसे उन्होंने वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने। तो उसकी कथा ऐसी है कि यही ब्राह्मण जो है नंद बाबा के घर में आता है, तो नंद बाबा यशोदा मैया उनको फलाहार देती हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो अपरस्य, यानी कि मराठी में कहते हैं ना सोवळा, सोवळा मीन्स वो स्नान करके स्वयं शुद्ध वस्त्र पहन के अपने हाथों से भोजन बनाएंगे। तो उनके लिए जो यजमान होते हैं वो चूल्हा, लकड़ी के कंडे, गोबर के कंडे सब जो है उनकी व्यवस्था करके उनको चावल सब्जी ला के देते हैं, फिर वो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, अपने ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। तो फिर नंद महाराज ने उनको व्यवस्था करके दी, और पहली बार उन्होंने बनाया और अपने नारायण को पुकारा, उस जन्म में वो नारायण के भक्त के रूप में उनके घर पे आए थे, नारायण को आह्वान किया, तुरंत कृष्ण भगवान भाग भाग के आए और उनका भोग खाना शुरू किया। फिर वो चिल्लाए जोर जोर से, यशोदा को बताया कि यशोदा मैया तुम कैसी हो, अपनी लाला को रखो अपने हाथ में, इसने मेरे भोग को भ्रष्ट कर दिया है। नंद बाबा डांटते हैं कृष्ण भगवान, फिर से विनती करते हैं, फिर से पूरा रसोई साफ करके फिर चूल्हा फिर दगा लगाया जाता है, फिर पुकारते हैं, पुकारने के दोपहर के रात के दो पहर के बाद में, और फिर वो आते हैं कृष्ण भगवान भाग भाग के। और तीसरी बार जो है बीच रात में जब बनाते हैं तो वो उनको पकड़ के रखते हैं, इसमें क्या हुआ था, वो सो गए ना सब लोग, उसको पकड़ के रखते हैं, सब लोग जग रहे हैं और पकड़ के रखते हैं, और उस समय वो पुकार रहे नारायण को, आइए मैंने आपके लिए भोग बनाया है, उसको स्वीकार कीजिए। तो वो कृष्ण भगवान जो कमरे में पकड़ के रखा है उनको बोले, मैया मुझे पुकार रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, मुझे जाने दो। और ये जब अंदर श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं कि मुझे वो ब्राह्मण पुकार रहा है, बार बार पुकार रहा है, मेरा फर्ज है जब मुझे कोई पुकारता है तो मुझे जाना पड़ता है, मैं जाता हूँ जब मैं कोई पुकारता है दिल से मुझे। हमारे लिए बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उनको हृदय से पुकारेंगे तो हमारे लिए भी वो आ सकते हैं, लेकिन हम उतना हृदय से उनको पुकारते नहीं हैं इसलिए वो नहीं आते। हाँ, क्या वो एक ऐसा भजन था, एक भजन मैंने सुना है कि कौन कहता है कि आप आते नहीं, आप द्रौपदी की तरह पुकारते नहीं इसलिए वो आते नहीं। उसी तरह से श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं यशोदा मैया को, मैया जाने दो मुझे पुकार रहा है, लेकिन ऐसे उन्होंने लीला की जब वो अंदर के कमरे में ऐसा बोल रहे हैं तो ब्राह्मण को ये सुनाई पड़ रहा है कि बालक बोल रहा है कि ब्राह्मण मुझे पुकार रहा है। तो ब्राह्मण को समझ में आता है कि जिस नारायण को मैं पुकार रहा हूँ इसे कैसे मालूम कि मैं पुकार रहा हूँ, तो वही नारायण है, बोले मैया यशोदा आने दो उसको, आने दो। फिर श्री कृष्ण भगवान उसको आके नारायण का दर्शन देते, वही भगवान हो जिसको तुम पुकार रहे हो। तो ये याद दिला उनको दिलाते हैं वो। तो ये कहानी जो है कल मुझे मदन मोहन जी ब्रजवासी ने बताई, जब हमने उनको ये कहानी बताई ब्राह्मण जी की तो उन्होंने सप्लीमेंट जोड़ दिया उसको अपनी तरफ से। ऐसे ब्रज में बहुत मीठी मीठी कहानियाँ हैं। तो वो ये कहानी जो है इसका उल्लेख चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस ब्राह्मण को कलयुग में करते हैं और उसको याद दिलाते हैं कि तुम नंद बाबा के घर पर भी आए थे। तो इस तरह से तभी महाप्रभु जी बहुत छोटे थे, बालक रूप में थे। तो इसके बाद में वो स्कूल जाना आरंभ करते हैं और जगन्नाथ मिश्रा, सॉरी स्कूल जाना आरंभ नहीं करते वो बाद में है, लेकिन हर घर में जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो पिता उसको अपने हाथ में अक्षर लिखाना सिखाते हैं। उसकी विधि ऐसी होती है कि वो एक थाली में चावल लेते हैं और उसके अंदर अक्षर बनाते हैं और अपने बेटे का हाथ पकड़ के वो अक्षर को निकालते हैं। कोई ओम लिखता है, कोई श्री लिखता है, कोई और श्री कृष्ण का नाम लिखता है। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र का हाथ में हाथ लेकर अक्षर लिखना आरंभ किया और बहुत ही जल्द चैतन्य महाप्रभु ने सारे अक्षर जल्दी जल्दी सीख लिए, बड़े आश्चर्यकारक गति से, इतनी गति से सीख लिए। फिर कर्णभेद नाम का सेरेमनी हुआ, इसमें वेदों को सबसे पहली बार बालक को सुनाते हैं, वेदों को सुनाते हैं, कर्ण वेद बोलते हैं उसको, मतलब कानों में पहले वेद की ध्वनि उच्चारण करते हैं उसका। तो उस समय कुछ दिन के बाद में उन्होंने वो भी समारोह किया और चूड़ाकरण यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मुंडन कहते हैं उसको, वो भी उनका विधि किया गया। तो बालक ने बहुत ही गति से सारे अक्षर को लिखना आरंभ किया और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो केवल कृष्ण मुकुंद गोविंद यही नाम लिखा करते थे, दिन रात केवल कृष्ण मुकुंद गोविंद गोपाल यही नाम लिखा करते थे। इस तरह से वैकुंठ के राजा जब बालक के रूप में आकर नदिया में लीला कर रहे हैं उसको देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। चैतन्य महाप्रभु जब बालक रूप में थे, जब ही चलने लगे दौड़ने लगे तो बड़ी कठिन कठिन अपेक्षा करते थे, क्या कहते थे कि मुझे वो उड़ता हुआ पक्षी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। जब उनको माता दे नहीं पाती थी तो वो जमीन पर गिर के रोते थे, मटके फोड़ देते थे, और सब सखियाँ आती थी, पर हरी हरी बोलती थी, शांत हो जाती थी। फिर कभी बोलते थे कि मुझे सूरज चाहिए, कब बोलते थे मुझे चांद चाहिए। कृष्ण भगवान भी ऐसे पुकारा करते थे। यशोदा मैया उनको बहुत सारे मटके में पानी भर के उनको दिखाती थी, देखो ये चांद है, आप ले सकते हैं। तो मुझे उनको बहुत खुशी होती थी, इतना दूर का चांद मेरी मैया ने मेरे इतने पास में ला के खड़ा कर दिया। इस तरह से ये सभी लीला उनको करते हुए वो नवद्वीप वासियों को बड़ा आनंद देते थे। इस तरह से हर व्यक्ति को भगवान के नाम का कीर्तन करने का मौका देते थे। तो एक बार क्या हुआ, अचानक बालक रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित, निमाई निमाई सुंदर, तो क्या चाहिए क्या चाहिए, लेकिन रोना बंद नहीं कर रहे थे। बताइए बालक क्या चाहिए, सब ताली बजाने लगे, हरी हरी बोलने लगे। फिर भी उस समय भगवान का नाम का कीर्तन करने के बाद भी निमाई ने रोना बंद नहीं किया। तब उन्होंने पूछा क्या चाहिए क्या आपको, बताइए आप क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित नाम के भगवान के बड़े भक्त हैं, उनके घर में आज उन्होंने नारायण भगवान को भोग लगाया है, वो मुझे चाहिए। आज एकादशी का दिन है बोलते वो, और एकादशी के दिन इन दोनों भक्तों ने भगवान को बड़े फिस्ट महाभोज अर्पण किया है, वो मुझे चाहिए। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतने छोटे बालक को कैसे पता कि वो दूर रहने वाले ब्राह्मण के घर में उन्होंने इतना बड़ा भोग बनाकर नारायण को एकादशी के दिन अर्पण किया है। और ये दोनों भक्त लकीली जगन्नाथ मिश्रा के बड़े अच्छे मित्र थे। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि उनके जीव और प्राण थे। तो वो उनके घर पर जाते हैं और देखते हैं सचमुच में जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित ने अपने घर में बड़ा महाभोज भगवान को अर्पण किया है। तो विनती करते हैं उनको कि मेरा बालक आपका भोग महाप्रसाद मांग रहा है। तो भाग भाग के सारा प्रसाद जो है उठाकर घर पे आते हैं उनके, और सारे भोग निमाई जो है छोटे से बालक होने पर भी सब ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब तक को देख के सबको आश्चर्य होता है कि कैसे हो सकता है, ये कौन सा बालक है, क्या बालक है, देवता है, इतनी बुद्धि इतनी याद इतनी सिद्धि कैसे आई इस बालक के बीच में, इसके बारे में अचंभा करते रहते हैं। लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। यथावकाश उनकी बाल लीला आगे बढ़ती है, तो क्या होता है कि वो हर रोज नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं। अभी नदी किनारे जो है नवद्वीप धाम में 24 घाट हैं, हाँ निमाई पंडित का जो घर है योगपीठ कहते हैं उसको, और उस योगपीठ के सामने जो नदी है गंगा नदी, उस पर 24 घाट हैं, और हर घाट पर अनंत लीलाएं हैं। और उस जमाने में जब चैतन्य महाप्रभु बालक थे तो करोड़ों विद्यार्थी नवद्वीप में पढ़ने आते थे, जैसे कि हमारी काशी है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर अपने बनारस विद्यापीठ है, और बड़े बड़े पंडित लोग वहाँ से पैदा हुआ करते थे। तो वैसे उस समय चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय बालक समय बाल्यपण के समय करोड़ों विद्यार्थी नवद्वीप में आकर, उधर वहाँ पर सैकड़ों विद्यालय थे और सैकड़ों पंडित ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, वाद विवाद करने में बहुत निपुण थे, उनके पास सीखने आते थे, और सब लोग दोपहर में वहाँ पर स्नान करने आते थे। इसलिए 2400 घाट पर हजारों लोगों की संख्या रहती थी और स्नान करना मुश्किल हुआ करता था। तो उसका रहस्य ऐसा है कि जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया और जमुना जी के किनारे में बहुत लीलाएँ की, बाल लीलाएँ की, पौगंड लीला की, कुमार लीला की, और जब वो अवस्था में आए तो भी लीलाएँ की उन्होंने, जमुना किनारे रास रचाया, अनंत लीलाएँ की। तो जमुना जी को जो भाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि जमुना जी भगवान का चरणामृत है, भगवान ने उन पर स्वयं स्नान किया है, कई बार जमुना जी में डुबकी लगाया उन्होंने, कालिया को मारने के बहाने, गेंद ढूंढने के बहाने, हाथ धोने के बहाने, हाँ पानी में क्रीड़ा करने के बहाने, कितने प्रकार से उन्होंने जमुना जी में कूदा है, वहाँ कूद लगाई है, छलांग लगाई है और क्रीड़ा की है। तो जमुना जी तो चरणामृत नहीं, उनका तो पूरा शरीर का धोया हुआ जल है। तो ये जो परम भाग्य जमुना जी को प्राप्त हुआ, ये देखकर गंगा जी को भी इच्छा हुई कि भगवान हम पर कब कृपा करेंगे। तो भगवान ने कहा कि अगली बार जब आएंगे तो आपके किनारे जन्म लेंगे और सारी लीला आपके यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार से निमाई पंडित के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया नदिया में और गंगा किनारे सब लीलाओं को संपन्न किया। तो क्या करते थे उसको हम ठीक से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वर्णन है कि जब निमाई पंडित स्नान करने जाया करते थे तो इतने गति से स्विमिंग करते थे कि कब किस घाट पर है वो पता नहीं चलता था, कभी इस घाट से कभी उस घाट से, और हर घाट पे किसी न किसी झगड़ा करते थे, उस पर जल उठाया करते थे, मट्टी फेंका करते थे, और अनेक ब्राह्मण वहाँ पर गायत्री जप गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो ये गायत्री जप करते समय क्या करते थे, जैसे कि आधे पानी में खड़े रहते जप करने के लिए, गायत्री का नियम होता ना, स्नान करते हैं, तीन डुबकियाँ लगाते हैं, फिर आधे पानी में खड़े रहते हैं और जनेऊ को अपने अंगूठे में मूंद कर गायत्री का मंत्र आँख बंद करके करते हैं, एकदम ध्यान से शांतिपूर्वक मन के अंदर करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई जमीन पानी के अंदर जाकर अंडर वाटर उनके पैर पकड़ते थे और पैर उठाकर उनको उल्टा क्या करते थे। फिर कभी कभी जल के नीचे जाके उनके दोनों पैरों के बीच में से निकल जाते थे, फिर कभी कभी नीचे जाकर मुंह में पानी भर के एकदम उनके मुख के सामने आते थे और मुंह पर पिचकारी मारते थे। तो सब लोग घर पे आके कंप्लेंट करते थे कि आपका जो बालक है वो शरारती है, ना हमें स्नान करने देता है, ना हमें जप करने देता है, और जब हम बाहर स्नान करके आते हैं, जब हम स्नान करने के लिए खड़े रहते हैं, तो बार बार हमारे शरीर पर किनारे की मट्टी फेंकते हैं, फिर हम अशुद्ध हो जाते हैं, फिर हमको स्नान करना पड़ता है, कई बार स्नान करना पड़ता है, हमको निकलने देते नहीं है वो, जब निकलते हैं तो फिर मट्टी फेंकते हैं, फिर हमको स्नान करना पड़ता है, और जो आखिर हम निकलते थे कभी यशस्वी होकर, तो क्या देखते हैं कि हमारे किनारे में औरतों के कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो औरतें स्नान करती थी वहाँ के कपड़े उठाकर यहाँ से एक्सचेंज करते थे वो, और यहाँ पर लेडीज़ के कपड़े, वहाँ पर जेंट्स के कपड़े, तो जब औरतें वहाँ से नदी के बाहर आती थी तो देखते थे कि हमारे पास धोती और कुर्ता पड़ा हुआ, और जब वहाँ पर ब्राह्मण लोग निकलते थे वो क्या देखते थे कि साड़ी और चोली है। इस प्रकार के वो कंप्लेंट किया करते थे घर जाकर। कभी कभी बालकों को चुमटा निकालते थे, जल उठाते थे उनके ऊपर, और उनका रोज का ये लीला था कि जो पढ़ के आते थे स्कूल से वो नदी में स्नान करते वक्त लोगों से वाद विवाद करते थे शास्त्र के ऊपर, और कोई भी नदी में करने वाला स्नान करने वाला बालक जो है उनसे शास्त्र के वाद विवाद में उनको परास्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार से यहाँ से किसी की छेड़ निकाल कर वो वहाँ जाते थे, वहाँ फिर वाद विवाद करते थे, फिर अगले घाट पे, फिर अगले घाट पे, फिर अगले घाट पे, फिर वापस आकर पूछते थे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला क्या, फिर उनको डिफीट करते थे, फिर आगे जाते थे, फिर जो उन्होंने उत्तर दिया है उसी को काट कर कुछ नया सिद्धांत बताते थे, फिर अपने आप ने बताया वो सिद्धांत को काट कर फिर पुराना सिद्धांत जो है उसको प्रूव करते थे। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, अभी आपने एक बात कही है शास्त्र के ऊपर तो उसको वो काट देते थे, चैलेंज करते थे उसको, और दूसरा सिद्धांत उस पर इस्टेब्लिश करते थे, और कुछ देर बाद में अपने द्वारा बताए गए सिद्धांत को तोड़कर फिर उस पहले वाला सिद्धांत जो है उसको प्रस्तापित करते थे, और सब लोग आश्चर्य से वो देखते थे कि किंतु कैसे डिफीट किया जाए, दोनों बातों को खुद ही सिद्ध कर रहे हैं शास्त्र के आधार पर श्लोक बताकर। तो इनकी बुद्धि, इनकी प्रगल्भ जो बुद्धि थी, मति थी, उनको देखकर सब लोग भ्रमित हो जाते थे कि कैसे इसको इतनी बुद्धि प्राप्त है। बड़े बड़े पंडितों को चैलेंज करते थे, वो नदी में स्नान करने को देते नहीं थे उनको त्रस्त करते थे, कोई पंडित होता ना जो लोगों को पढ़ाते हैं, उनको ही आकर कोई चैलेंज करेगा पढ़ाते वक्त तो उनको कितना संकोच होगा, अरे मैं इनको पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बीच में आके मुझे ही ये काट रहे हैं और मैं उनको सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या बताना है मुझे उनको, आई एम नॉट एबल टू डिफीट दिस चाइल्ड। इस तरह से वो सारे पंडितों को वहाँ पर संकोच में लाया करते थे, सब लोग आकर उनको कंप्लेंट किया करते थे। तो एक बार अभी वो ब्राह्मण लोग घर पे जाते हैं और सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा को कंप्लेंट करते हैं, क्या कंप्लेंट करते हैं कि ये बालक जो मुझे आके बोलता है जब मैं जप करते रहता हूँ, आप किस पर जप कर रहे हो, जिस नारायण को पुकार रहे हो वो मैं ही हूँ, मेरा पूजन करो। तुमको समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों कर रहा है, बड़ा पाप है ऐसे कहना कि मैं नारायण हूँ। फिर दूसरा ब्राह्मण कहता है कि मैं जब वहाँ पर बैठकर विष्णु की पूजा करने की तैयारी करता हूँ और फूल लेके आता हूँ, दुर्वा लेके आता हूँ, भोग व्यंजन लेके आता हूँ, चंदन की पेस्ट लेके आता हूँ और विष्णु के लिए आसन भी लेके आता हूँ, तो अचानक ही बालक आकर हमारे विष्णु के आसन पर बैठ जाता है और सारा भोग खा जाता है। फिर दूसरा ब्राह्मण कहता है कि जब मैं स्नान करता हूँ तुम्हारा बालक आता है और आसन पर बैठ कर सारे व्यंजन खाकर भाग जाता है, और तीसरा कहता है अरे वो मुझे आके पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो, कोई बात नहीं क्या हुआ, ऐसे इतना बड़ा क्या होगा, अगर मैं आपका भोग खा लिया तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होना, चिंता की बात नहीं है। एक ब्राह्मण कहता है कि जब मैं गायत्री जब करता हूँ तब मेरा पैर पकड़ के मुझे उल्टा कर देता है, और दूसरा कहता है कि जब मैं स्नान करके बाहर आता हूँ तो मेरे कपड़े सब गायब रहते हैं, फूल गायब रहते हैं और मेरी भगवद्गीता भी गायब रहती। चौथा कहता है कि जब मैं मेरे बालक को लेकर स्नान करने आता हूँ तो ये मेरे बालक के कान में आकर मुंह में गंगा जी का पानी भर के पिचकारी मारता है। फिर जब पांचवा ब्राह्मण कहता है कि जो शिव जी का भक्त है हाँ वहाँ पर शिवलिंग को लेकर आता है तो उनका शिवलिंग, वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वो उनके पीछे से आकर जोरों से हिलाते हैं, कहते हैं मैं ही शिव हूँ मैं ही शिव हूँ, और उनके कंधे पर आके बैठ जाते हैं। फिर छठवा ब्राह्मण कहता है कि जब मैं स्नान करता हूँ तो बार बार मेरे शरीर पर ये रेती फेंकता है, ये औरतों के आदमियों के कपड़े जो है एक्सचेंज करता है और हम सबको इतना संकोच में डालता है, औरतें हम पर चिल्लाती हैं ओ जगन्नाथ मिश्रा आप तो हमारे मित्र हो लेकिन फिर भी हमें आपको बताने में बहुत दुख हो रहा है लेकिन इतना हमको कष्ट हो रहा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 6-6 घंटा आपका बालक नदी में स्नान करता है कैसे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? कोई आदमी 6 घंटे पानी में रहेगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। इसलिए सची माता बड़ी व्याकुल रहती थी कंप्लेंट सुनकर। इतने में कुछ लड़कियां आती थी वहां पर बड़े गुस्से में और सची देवी को कंप्लेंट करती थी, हे माता देखिए आपने बच्चे आपके बालक ने हमारे लिए क्या क्या किया, ये हमारे कपड़े को चुराता है, ये हमारा अपमान करता है और जब हम उनके अपमान का जवाब देते हैं तो हमारे पर पानी फेंकता है मट्टी फेंकता है और हमसे झगड़ा करता है। दूसरी सखी कहती है कि हम अपने देवी की पूजा करते हैं और नियमों का वचनों का पालन करते हैं, फल फूल लेके आते हैं, हमसे जबरदस्ती छीन लेता है और कभी फेंकता है तो कभी खा लेता है भोग लगाने के पहले ही, ये हमारे कपड़ों को छीनता है। फिर अगर हम स्नान करके वापस आते हैं तो फिर औरतों पर भी मट्टी फेंकता है, हमको दोबारा स्नान करना पड़ता है। कभी कभी हमारे बीच में से घुस के आता है और हमारे कानों में जोर जोर से चिल्लाता है जब हम भजन करते रहते हैं, और कई बार हमारे मुंह में गाल में पानी भर के पिचकारी मारता है मुंह में और कान में। फिर कभी कभी ऐसा एक होता है ना गांव में, आपको पता है कि वो ऐसा एक वस्तु होती है जिसको आपके शरीर में रखते ही बहुत खुजली आती है, मालूम है आपको, उसको कहते हैं खास खुजली, हाँ वो कहते हैं कांग्रेस ग्रास बोलते हैं उसको, वो सफ़ेद रंग की टोपी जैसा होता है, उस खेत में आप जाएंगे तो जिंदगी भर आप खुजाते रहेंगे। तो कहते हैं वो जो फल होते हैं उसको ओकाड़ा कहते हैं, उस ओकाड़ा के बीज जो है वो हमारे शरीर पे आके डालता है जब हम स्नान करने को आते हैं, और हम लोग सब लोग वहाँ पर स्नान करने के बदले में बदन को खुजाते रहते हैं। और कभी कभी आके बोलता है कि मैं भगवान हूँ आप सब लोग मेरी पूजा करो, ये सब देवी देवताओं के पूजा के लिए सब व्यंजन लाए हो तो मेरे मुझे अर्पण करो मेरी पूजा करो। इसलिए हमें लगता है कि आपका जो बालक है वो नंद के बालक के जैसा है, कृष्ण भगवान जैसा, हमने भी शास्त्र में सुना है नंद के बालक जैसा, लेकिन ये बालक लगता है उसी के जैसा है। अगर तुम, मैं आपको विनती करती हूँ कि अभी के अभी आप उसको रोक लीजिए नहीं तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इस तरह से सभी उनकी जो कंप्लेंट्स है वो सुनकर सची माता को दुख भी होता है बड़ी खुशी भी होती है, और अपने हर एक कन्याओं को वो गले लगाती है, कहते कि माफ़ कर देना मेरे बालक को, मेरा बालक नटखट है अनजान है निष्पाप है छोटा सा है, उसके अपराधों को आप गंभीरता से मत लेना उसको माफ़ कर देना, से करके प्रेम से सब लड़कियों को गले लगाती थी सची माता देवी। फिर सभी लड़कियां सची माता के चरणों के धूल लेकर अपने काम में चले जाती थी, और फिर भगवान नदी में जाने के बाद में उनको त्रस्त किया करते थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएँ हैं। इसके आगे जो लीला आती है उसका वर्णन हम करेंगे। हरे कृष्ण। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का ब्राह्मण जो संस्कार है यज्ञोपवीत वो संस्कार होता है। एक मिनट ना, तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि बहुत ही पवित्र महीने में बहुत ही पवित्र तिथि में जगन्नाथ मिश्रा सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वाद्य वादकों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं और वेद घोष में सबके सामने अपनी दिव्य हाथों से श्री निमाई को ब्राह्मण जो जनीव है उसको पहनते हैं। उस समय स्वयं अनंत शेष वो ब्राह्मण का जो धागा है वो बनकर चैतन्य महाप्रभु शरीर को लिपट लेते हैं और प्रकाशमान नजर आता है वो ब्राह्मण का थ्रेड जो है, जनीव जो है वो आता है। और उस समय उन्होंने वामन देव की लीला प्रकट की है, जब ही उनकी मुंडन हुआ उनका और जगन्नाथ मिश्रा ने उनको जनेऊ पहनाया तो सबको वामन देव की याद आई और अपने गले में झोली लटकाकर हाथ में डंडा लेकर भिक्षा का पात्र लेकर स्वयं निमाई जो है सभी ब्राह्मणों को घर में जाते हैं। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि सभी जो नवद्वीपवासी थे उन्होंने बड़े प्रेम से जो भी घर में था उसे रूप से आकर्षित होकर वामन देव की याद करके करते उन सबको उन्होंने दक्षिणा दिया और ये देखकर सब देवता ब्रह्मा जी सरस्वती देवी पार्वती देवी लक्ष्मी देवी आकाशित लीलाओं को देख रही है तो वे मोहित हो जाती है और ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण करके वो प्रकट हो जाते हैं पृथ्वी पर नवद्वीप धाम में और निमाई के झोली में और बर्तन में दक्षिणा देते हैं, उनको धन धान्य देते हैं, सोने के मोहरे देते हैं। इस तरह से भगवान वामन की लीला जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की वहाँ पर अपने ब्राह्मण दीक्षा के उपलक्ष्य में। तो इस तरह से महाप्रभु जी की लीला तो अगाध है, बाल लीलाओं में उन्होंने नवद्वीप वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया है। तो हमें समझना जरूरी इतना है कि लीलाओं का आनंद तो एक बात है लेकिन उनका जो अवतार है पूरा वो किस उद्देश्य से उन्होंने लिया है और उसका सार क्या है समझना जरूरी है। आज सवेरे हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है उसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि सारे शिक्षाओं का सार क्या है। वह है त्रिनादपि सुनि चेना तरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय स्वभाव। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान का भक्त मानता है और जब तक वो नम्रता को अपनाता नहीं है, दूसरों का सम्मान नहीं करता है, एक वृक्ष की तरह सहनशील नहीं बनता है, तब तक भगवान के नाम की जो कृपा उस पर होनी चाहिए हो सकती है वो उस पर नहीं होती है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में ही अनेक व्याकरणों के ग्रंथ लिखे थे लेकिन अपने मित्रों के कारण उन्होंने उसको नदी में डुबा दिया। इसी बाल लीला में उन्होंने व्याकरण पर श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे और अपने मित्र से कहा कि आप भी लिखो, उसका ग्रंथ भी पढ़ते हैं। लेकिन जब उसका मित्र उन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब स्वयं आप लिख रहे हैं ग्रंथ तो मेरा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, इसकी ज़रूरत ही क्या है, जब आप स्वयं लिख रहे हैं। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु जो हैं अपनी वैराग्य को प्रकट करते हुए अपने द्वारा लिखा गया किताब जो है नदी में डुबा देते हैं। आप कहते हैं अभी देखो मेरे द्वारा लिखी गई किताब तो यहाँ पर नहीं है, अभी आपकी किताब जो है वो प्रसिद्ध की जाएगी, क्या कहते हैं उसको पब्लिश की जाएगी, प्रकाशित की जाएगी। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, जो भी लिखा वो नदी में डुबा दिया। जैसे कोई कविता कवि होता है ना, कोई कवि या कोई लेखक होता है जो किताबें लिखता है उसको अपनी कविता संग्रह और अपना ग्रंथ जो है बहुत प्यारा होता है, एज माय प्रोडक्शन, ये मेरी निर्माण है, बहुत आसक्त होता है व्यक्ति अपने निर्माण से। जैसे हम अपने बच्चों से आसक्त क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन है, हाँ इसका मैंने निर्माण किया है, दिस इज माय प्रोडक्शन, इस भाव से हम लोग आसक्त रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं के द्वारा लिखे गए श्रेष्ठ ग्रंथ होने के बावजूद भी उसको बिल्कुल निरासक्त होकर नदी में डुबा देते हैं और उनके द्वारा जो भी उन्होंने कहा है वो केवल दो जगह कहा है, एक्चुअली चार जगह उन्होंने शिक्षा प्रकट की है। वो एक जगह उन्होंने रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट त्रिवेणी संगम इलाहाबाद यहाँ पर शिक्षा दी और वहाँ पर उन्होंने भगवान की सेवा के बारे में उनको शिक्षा दिया, जिसे हम कहते हैं अभिधेय ज्ञान। अभिधेय ज्ञान का मतलब है कि भगवान से संपन्न करने के बाद में भगवान को कैसे सेवित किया जाए, कैसे सेवा की जाए उनकी। तो रूप गोस्वामी ने उसको भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत ऐसे अनंत ग्रंथों में उसको फिर प्रकाशित किया। लेकिन भगवान ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, भगवान ने उनको 9 दिन तक ज्ञान दिया, 10 दिन तक। और एक उन्होंने संवाद किया है सनातन गोस्वामी के साथ। 2 महीने तक उन्होंने बनारस में रहकर गंगा जी के किनारे सनातन गोस्वामी को संबंध ज्ञान के विषय पर ज्ञान दिया, जिस भगवान से संबंध कैसे किया जाता है, इस दुनिया के आसक्ति को छोड़कर दुनिया के साथ बना हुआ संबंध जो है भोग का संबंध, उसे कैसे छोड़ के हम मुक्त हो सकते हैं या कैसे पुनः श्री मदन मोहन जी के चरणों में अपना संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। यह ज्ञान जो है संबंध ज्ञान, ये उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया। सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में उसको प्रकाशित किया। फिर रामानंद राय के साथ उन्होंने संवाद किया और वो है प्रयोजन ज्ञान। वो क्या है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ने के बाद में हम उनकी सेवा करते हैं, तो कौन सी बड़ी सेवा है, श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? ऐसे करते करते उनका चर्चा आगे बढ़ती है, इससे बड़ी सेवा क्या है, इससे बड़ी सेवा क्या है, इससे बड़ी सेवा क्या है। फिर शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साक्ष्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस, फिर माधुर्य रस के आगे फिर उसके आगे सेवा क्या है, फिर सबसे आगे जाकर राधा रानी के जो महाभाव सेवा है, वहां पर जाके उनका संवाद रुक जाता है। तो सेवा की जो गरिमा है उसको कहते हैं प्रयोजन ज्ञान, वो उन्होंने रामानंद राय के संवाद में प्रकट किया है और वो चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ के रूप में हमारे सामने विराजमान है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लिखा गया कोई ग्रंथ हमारे पास नहीं है, केवल एक ही वस्तु हमारे पास है तो उन्होंने स्वयं लिखी हुई है। वो कौन सी वस्तु है? शिक्षाष्टकम। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो रोज इस प्रार्थना को यहाँ पर मुखोद्गत करके आप लोग गाते हो। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये कैसा शास्त्र है, केवल 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखे गए हमारे लिए उपलब्ध हैं। और भक्तिवेदांत अस्पताल का नौसिखिया एम्प्लॉय भी इसको कंठस्थ करके गाता है। कितनी बड़ी भाग्य की बात है जब मैं देखता हूँ इस वस्तु को कि लोग मुखोद्गत करके गा रहे हैं उसको, तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। और वो 8 श्लोक ऐसे उन्होंने लिखे हुए हैं कि भक्ति की जो शुरुआत है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय मैल से भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर के पाप से हमारे हृदय पर बोझ है, ये बोझ साफ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भव महादावाग्नि निर्वापणम, महादावाग्नि जो है जन्म मृत्यु का, इसका भी नाश हो जाता है, हृदय स्वच्छ हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, आनंद के सागर में हम डूब जाते हैं। ये तो प्रथम ज्ञान है पाप से मुक्ति का। यहाँ से आगे भक्ति की हर स्थिति का, साधना भक्ति के जो अंग है, वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये जो भक्ति के 3 विशेष अंग है, इन 3 अंगों का वर्णन इन 8 श्लोक में किया गया है। पहले 4 श्लोक जो है वो साधना भक्ति के हैं, उसके आगे 2 श्लोक जो है वो भाव भक्ति के हैं, 7वां श्लोक जो है वो भाव भक्ति का है और 8वां श्लोक जो है वो प्रेम भक्ति का है। 8 श्लोकों में सारा जो रहस्य है भक्ति का चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कुशलता से प्रकट किया है। इसलिए 1998 से हमारे हॉस्पिटल में ये प्रार्थना हम गा रहे हैं और रोज 1 श्लोक पर थोड़ा सा चिंतन होता है, लेकिन अभी भी आज तक कोई भी चिंतन पुराना नहीं हो गया है। हाँ, क्योंकि ये सागर है, एक एक श्लोक जो है वो चिंतनों का और रहस्यों का सागर है। इसके एक एक शब्द के ऊपर भी आप विवरण करेंगे तो भी आपको महीनों लग जाएंगे, इतना सार, इतना अर्थ, इतना रहस्य इसके अंदर भरा हुआ है। और ये अमूल्य भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं चैतन्य चरितामृत में एक संवाद में बताते हैं इन 8 श्लोकों में से सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिन मानिन कीर्तनीय सदाहरि। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो श्लोक है वो महाप्रभु जी आदेश देते हैं कि हर भक्त को ये श्लोक जो है गले में माला की तरह पहनना चाहिए, याद दिलाने के लिए कि हमको कौन से स्थिति को प्राप्त करना है, व्हाट स्टेज वी वांट टू अचीव। और ये जो बातें बताई गई हैं कि हमको रास्ते पर पड़े हुए तृण से भी अधिक नम्र बनना चाहिए, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना चाहिए, दूसरों को सर्वदा सम्मान देकर स्वयं के लिए किसी भी मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तब जाकर हम अखंड निरंतर बिना बाधा के हमेशा के लिए प्रेम भक्ति में ओतप्रोत होकर भगवान के नाम का जप एवं कीर्तन कर सकते हैं। ये सब चार बातें जो बताई गई है, इसमें से सबसे शुरुआत की बात जो है वो है दूसरों को आदर देना, टू रिस्पेक्ट अदर्स एज पर्सन्स एज पीपल, आत्मा के रूप में व्यक्ति के रूप में उनको आदर देना, चाहे वो गरीब हो, कुरूप हो, निचली जाति के हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो या श्रेष्ठ ज्ञानी हो या धनवान हो या फिल्म एक्टर हो या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, ऐसे किसी प्रकार का भेद न करते हुए हर जीव का, यहाँ तक कि चींटी तक का भी, कीड़े मकोड़े का भी आदर करना भगवान के अंश के रूप में, भगवान का स्वरूप उनके अंदर अवस्थित देखकर उनका आदर करना, ये हमारा पहला कदम है। दूसरा कदम है उनका आदर करते हुए खुद के लिए आदर की अपेक्षा नहीं करना, अमानी मान देना, मान देना मतलब दूसरों को मान देना चाहिए, अमानी मतलब स्वयं के लिए रिटर्न में मान और सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तभी जाकर हमारे अंदर सहनशीलता और नम्रता का प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। हमारे अंदर अगर नम्रता और सहनशीलता का बीज उत्पन्न होना है और आगे पलना है उसको, तो सबसे पहले दूसरों को आदर देना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को नीचा मानना नहीं चाहिए, मन से भी नहीं मानना चाहिए, मुख से बोलना तो दूसरी बात है। और जब हम ऐसे हर व्यक्ति को आदर देना के लिए हम संभव सफल हो जाएंगे, तब जाकर हमारे अंदर सहनशीलता उत्पन्न होगी। ये खाली बोलना आसान है, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना चाहिए, उसका अर्थ क्या होता है? वृक्ष जो है वो 50-60-70 डिग्री टेम्परेचर होता है सऊदी अरेबिया में, उसमें भी खड़ा रहता है, लेकिन जो भी उसकी शरीर में जान बचती है, जो भी छाया होती है, उसमें वो जीव को शांति और ठंडक पहुंचाता है अपनी छाया में, स्वयं कष्ट सहन कर कर, स्थिति एक ही है गर्मी की, उसमें वो स्वयं कष्ट सहन कर रहा है और अपने आप कष्ट सहन करते हुए आपको ठंडक दे रहा है, आपको छाया दे रहा है। और सर्दी में बर्फ से भरा हुआ वृक्ष जो है अमेरिका में इंग्लैंड में रहते हैं, पूरा बर्फ से भरा हुआ, उसी स्वयं को बर्फ के ठंडक में फ्रीजिंग होते हुए अपने शरीर के टुकड़े करके वो देता है, और जब उसको जलाते हैं तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है और आपको गर्मी प्राप्त होती है। हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं जब हम शांत हैं, हमको कोई पीड़ा नहीं है, तब हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब खुद को पीड़ा है तो दूसरे की सेवा हम नहीं कर सकते। लेकिन एक वृक्ष इसका प्रतीक है कि जब खुद को कष्ट हो रहा है उसको, और जो कष्ट हो रहा है उसी कष्ट के लिए वो दूसरों को शांति देता है, खुद गर्मी से तड़प रहा है, लोग भी तड़प रहे हैं, लेकिन खुद जब वो तड़पता है गर्मी से, दूसरों को ठंडक देता है। लोग जब ठंड में कांप रहे हैं बर्फ में, तो वो भी कांप रहे हैं, उसके साथ आसपास बर्फ जमी हुई है, लेकिन वो स्वयं कष्ट भोगते हुए उसी कष्ट का निवारण करने के लिए अपने शरीर के अंग को जला देता है और दूसरों को गर्मी देता है। वैसे ही तृण के पत्ते का वर्णन है, तृण का मतलब क्या होता है? आप उस पर चल सकते हो, उसको कुचल सकते हो, टट्टी पेशाब उस पर कर सकते हो, कचरा फेंक सकते हो, कुत्ता बिल्ली आके अपनी विष्ठा मूत्र उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं करता है कभी। अगर वो खड़ा भी है और आप वो चलते हो तो वो कुछ नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर वर्णन जो है वो खड़े तृण पत्ते का वर्णन नहीं है, रस्ते पर पड़े हुए तृण का वर्णन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जो वृक्ष जो तृण का पत्ता जमीन से ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, आप उस पर पैर दोगे और निकल जाओगे, दोबारा वो खड़ा हो जाएगा। ये जो पत्ता होता है वो टूटा हुआ पत्ता है, जो गिरा हुआ है, जो पड़ा हुआ है रास्ते पर, कोई पोजीशन नहीं उसके लिए। और क्या हमसे अपेक्षा है? कि उससे भी अधिक आपको नम्र बनना है, हम सबको उससे भी अधिक नम्र बनना है। बड़ी कठिन बात है ये, इतनी सहज बात नहीं बोलने जैसे, लेकिन फिर भी अगर हम वो करने को तैयार हैं, हमारे अंदर वो नम्रता नहीं है समझ लो, वो सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमको वो चाहिए, क्यों? क्योंकि महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि जब उस नम्रता को, उस सहनशीलता को आप प्राप्त करोगे, तभी जाकर आप भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन कर सकते हो, नहीं तो निरंतर कीर्तन मुमकिन नहीं है, उसमें बाधा आएगी, रुकावट आएगी, गैप आएगी उसके अंदर बीच में, और जब उसके अंदर रुकावट आती है तो उस रुकावट में, उस गैप में माया प्रवेश करती है। ऐसा न्यूट्रल नहीं होता है वो, आपका भजन रुक गया एकदम शांति है, फिर कुछ देर बाद फिर भजन शुरू होता है, ऐसा नहीं होता है। उस बीच के समय पे माया हम पर हावी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर केवल कृष्ण है या तो माया है, बीच में कुछ नहीं। या तो कृष्ण है मतलब प्रकाश उजाला ज्ञान है कृष्ण का, भक्ति है, या तो माया का प्रभाव है, बीच में कुछ नहीं। अगर भजन में अवरोध आता है, गैप पड़ती है, तो उस गैप में माया प्रवेश करती है और वो भगवान से आपको अलग कर देती है। हम जरूर भजन करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, 15 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस निरंतर कीर्तन नहीं कर सकते हैं जब तक हम चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस संदेश को समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, तब तक कीर्तन यह सदाहरी नहीं हो सकता है। इसलिए बार बार चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से चैतन्य चरितामृत के वर्णन में बताते हैं कि इस मंत्र को हम सबको गले में पहनना चाहिए। और हरिदास ठाकुर को उन्होंने बताया है कि इस मंत्र के आप साक्षात स्वरूप हो, यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दिस मंत्र, प्रणादपि सुनिचेन, क्योंकि आपका आचरण और आपका वचन दोनों एक जैसा है। कुछ लोग प्रचार करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनका आचरण ठीक नहीं होता है, और कुछ लोग आचरण में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन आप आचरण और प्रचार और नम्रता के श्रेष्ठ उदाहरण हो। इसलिए आप स्वयं जैसे ये गले में माला पहनना चाहिए, जिससे व्यक्ति भक्त जो है वो सुशोभित होता है। नम्रता की माला गले में पहनने से मतलब जो नम्र बनता है वो व्यक्ति समाज में आकर्षित होता है, सुंदर होता है, सच सत्य स्वरूप में, हाँ, मेकअप करके नहीं। उसी तरह से वैष्णव समाज अगर शरीर है, वैष्णवों से बना हुआ समुदाय अगर शरीर है, तो आप हरिदास ठाकुर इस समाज का जो शरीर है उसके गले का हार हो, जो इस वैष्णवों के समाज को शोभा दे रहा है। यू आर द ऑर्नामेंट ऑफ द बॉडी ऑफ वैष्णवस, यू आर द डेकोरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ वैष्णवस, ऐसे वो हरिदास ठाकुर को गौरव करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठ जीव जो है, विष्णु द्वारा प्रकट किए गए प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, वो अपना ब्रह्म पद छोड़कर द्वापर में बरसाना में आकर पत्थर बने हुए हैं, ये चाहते हुए कि मुझे सखियों की और सखियों की चरणों की धूल प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए बरसाना में 4 मुखी पत्थर बने हुए हैं ब्रह्माचल। वही ब्रह्मा जी द्वापर में जो भगवान का अपराध करते हैं गलती से, माया के प्रभाव में पश्चाताप करते हैं, ब्रह्म पद को छोड़ देते हैं, कम से कम द्वापर में वो ब्रह्माचल बने हैं, ब्रह्मा जी के स्वयं के रूप में ही खड़े उधर, अपने पद को छोड़ा नहीं है, ये ब्रह्म है स्वयं खड़े हैं। लेकिन कलयुग में वही ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म पद को त्याग करके हुए निरीक्ष होकर, मतलब इस ब्रह्म पद का क्या लाभ है मुझे, इस ब्रह्म पद के होते हुए भी मैंने ये ब्रह्मा बनकर भी भगवान कृष्ण का अपराध किया है, आई डोंट वॉन्ट दिस पोजिशन, मुझे तुच्छ बनकर जन्म लेना है और हो सके तो आपके लीलाओं में सहायता करना है, इसलिए वो तपस्या करते हैं। जैसे उद्धव जी तपस्या करते हैं कि मुझे भगवान के साथ में इतना उच्च पद प्राप्त है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन में जाकर तृण का पत्ता बनना है, ताकि ये गोपियाँ सहजता से मुझ पर चल सकें और उनके चरणों की धूल जो है मेरे शिष्य पर प्राप्त हो सके। इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त होने पर भी उसको त्याग कर उद्धव जी कुसुम सरोवर के पास में तृण का पत्ता बनकर, गुलमलता बनकर वहाँ विराजमान। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म पद को त्याग कर कलयुग में यवन कुल में जन्म लेते हैं, एक तुच्छ जीव के रूप में जन्म लेते हैं, और ऐसा होने पर भी नामाचार्य बन जाते हैं, भगवान के नाम के आचार्य प्रवर्तक बन जाते हैं। इसी से हमको सीखना यह है कि ऊंचे पद में, धन में, सुंदरता में, शक्ति में कुछ नहीं है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। संतों ने अनंत काल तक, अनंत हजारों संख्या में संतों ने यही उदाहरण दिया है, इन सब लोगों को, सब चीज़ों को त्याग करके उन्होंने भिक्षु का जीवन अपनाया है। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलम श्रेणीम तथा तुच्छवत, क्या बताया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, जिन चीज़ों के पीछे पूरी दुनिया पागल है उनके पीछे भागती रहती है, हाँ खून खराब है, क्या क्या नहीं करते हैं, उन चीज़ों को एक तृण के सरह तुच्छ मानकर उन्होंने त्याग कर दिया है और वृंदावन में आके भिक्षुक बने हैं वो सर्वोच्च धन प्राप्त करने के लिए जो भक्ति और प्रेम है। इसी का उदाहरण ठाकुर हरिदास जी हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों का उदाहरण चैतन्य चरितामृत में हम प्राप्त करते हैं और महाप्रभु चैतन्य का जो अवतार है ये इसी को सिद्ध करने के लिए है कि प्रेम क्या वस्तु है, उसका अनुभव क्या होता है, ये पूरे विश्व के लिए प्रकाशित करने के लिए स्वयं भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं। जैसे उद्धव जी ने अपना पद छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद छोड़ दिया और भगवान ने भी स्वयं अपना भगवान का पद छोड़ दिया है और वो भक्त बने हुए हैं। यही समझने के लिए कि प्रेम का रहस्य क्या है और ये प्रेम का रहस्य हम सबको समझाने के लिए उन्होंने सारे भक्तों को इकट्ठा किया है, हर युग के भक्तों को इकट्ठा किया है और प्रेम का आदान प्रदान करके एक श्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने प्रकट किया है और वही चैतन्य चरितामृत है, वही चैतन्य महाप्रभु का जीवन है जिनका जन्म जो है हम कल मनाने वाले हैं। आप सबको हम निमंत्रण देते हैं, आप मंदिरों में आइए, राधा गिरधारी मंदिर में आइए, राधा गोपीनाथ में आइए, चौपाटी गिरगांव में जुहू मंदिर में आइए, राधा रास बिहारी के पास, विश्व में सभी जगह पर कल के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाया जाएगा। भक्त लोग सवेरे से उपवास करेंगे और जब चंद्र उदय होता है उस समय चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था तो चंद्र उदय के समय, सूर्यास्त नहीं, चंद्र उदय के समय तक भगवान के भक्त जो हैं उपवास करेंगे और उस समय भगवान का अभिषेक संपन्न होगा गौर निताई का और सब लोग फिर उपवास पारण करेंगे और अगले दिन जगन्नाथ मिश्रा उत्सव में भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में प्रसाद लेंगे। तो मैं आपको कुछ भजनों का सार बताऊंगा। एक भक्त हुए हैं वासुदेव घोष, वो लिखते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु जन्म नहीं लिए होते तो प्रेम रस की महिमा हमको कौन बताता, हु विल टेल अस दी सीक्रेट्स ऑफ लव। जो राधा रानी का प्रेम भगवान के प्रति है उसका रहस्य हमारे लिए कौन प्रकाशित करता, जो ब्रज की युवतियों ने प्रेम प्रकट किया है भगवान के प्रति वो हमें कैसे पता चलता। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को हम लोगों को भवसागर से मुक्त होना है तो हमको गौरांग महाप्रभु के गुणों को पुनः पुनः गाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे विश्व में पूरे अनंत ब्रह्मांडों में चैतन्य महाप्रभु से अधिक दयालु और कोई हमें नजर नहीं आता है। ए भव सागर एमो न दयाल ना देखिए एक जन, एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है जो इनके इतना दयालु है। और फिर वही आगे लिखते हैं अपने अगले भजन में कि जो रामचंद्र बनकर धनुष धारण करते हुए आते हैं, जो कृष्ण बनकर चक्र को धारण करके आते हैं, वही श्री कृष्ण कलयुग में दंड और कमंडल धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और सबको प्रेम बांटते हैं। राधा का भाव लेकर गौर अवतार धारण करके उन्होंने हरे कृष्ण नाम का प्रचार किया है। और आगे लोचनदास ठाकुर नाम के भक्त हुए हैं, वो कहते हैं हेनु अवतारे जार रतिना जन्मिलो, अगर इतना कृपालु अवतार लेने के बाद भी, इतनी लीला उनको प्रकट करने के पश्चात भी, इतने लोगों पापियों कर कृपा करके उनका उद्धार करने के बाद, उनकी कथा सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में हमारे मन में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम रति उत्पन्न नहीं होती है, हाँ हेनो अवतारे जारो रति ना जन्मी लो, रति मतलब आकर्षण अट्रैक्शन, अगर नहीं जन्म उत्पन्न होता है। लोचन बोले सही पापो पापी एलो और गेलो, मतलब ऐसा पापी व्यक्ति का जीवन जानवर के समान है, जन्म लिया और मर गया। और आगे वही लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि परम करुणा, एक होती है करुणा दूसरी होती है परम करुणा, सीमा करुणा की, इसका प्रतीक है गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। सब अवतारों के वो सार हैं और केवल सार ही नहीं, सार के शिरोमणि हैं, द टॉप मोस्ट क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। और इनका जीवन मतलब केवल आनंद का सागर है और कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। इनका जीवन क्या है, क्या हमको देते हैं, आनंद के सागर में डूबने का मौका देते हैं। कभी कभी प्रतिपदम, हर कदम पर, और इस अमृत के, पूर्ण अमृत के आस्वादन का मौका हर क्षण देते हैं। ये महाप्रभु कृपा है। फिर कहते हैं कि अगर आपको इस भवसागर से मुक्त होना है तो इनके द्वारा दिया गया जो हरिनाम है उसको मुख से उच्चारण करना पड़ेगा, तब हम भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे, कैसी कृपा है उनकी, इनकी कृपा से पत्थर भी पिघल जाते हैं। पशु पक्षी प्राणी झारखंड में जब वो आ रहे थे वृंदावन की ओर, सभी लोग जो हिंस पक्षी थे, हिंस प्राणी थे, इनके मुख से नाम सुनते ही पागल जैसे हो गए, हाँ विभोर हो गए, और शत्रुओं से भी आलिंगन देने लगे, जैसे हिरण सिंह को आलिंगन देने लगे, हाथी गज को, गज को शेर आलिंगन देने लगा, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे जैसे मानो किसी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इस प्रकार के दिव्य अनुभव, पत्थर को पिघलने का अनुभव भी चैतन्य महाप्रभु के होने से जीवों को अनुभव हुआ। इस प्रकार की कृपा का तो अनंत वर्णन संतों ने किया है। तो हमें अगर इनकी कृपा चाहिए तो एक ही कर रही रिक्वायरमेंट है, श्रद्धा से हमको भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना है, और एक ही वादा करना है कि आगे हम पाप नहीं करेंगे। बस इतना अगर हम करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की सारी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो।